जो हैं टर्की में पहुंचे हुए थे, इनका डेलीगेशन जो है इन्होंने आज मुलाकातें की हैं। ये जो इनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी, इनकी मुलाकात हुई है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर मेवलत कसूवज़ोग्लू जो है उनके साथ। वो कहते हैं जी कसूवज़ोग्लू साहब जो हैं उन्होंने हमें इन्वाइट भेजा था, हम इनके साथ बैठ के जो है बात करने। अच्छा, टर्की ने इनको कहा है कि भाई आप जो हैं यानी कि अपनी हरकतें दुरुस्त करें ताकि दुनिया जो है आपके साथ बैठे। इन्होंने कहा है जी कि हम आपके साथ माइग्रेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और जो है ह्यूमैनिटेरियन एड, उसकी बात हम लोग करने के लिए आए हैं। टर्की ने उनको कहा है कि हाँ बिल्कुल, हम वर्ल्ड लीडर्स को कहेंगे, वी विल अर्ज देम कि आपकी ये इन चीजों के लिए हेल्प करें, लेकिन आप भी तो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ कि ताकि जो 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 दुनिया के फियर्स हैं आपकी तरफ जो है वो यू नीड टू एले देम, राइट। और टर्की ने फिर से एक दफा कहा है कि हम जो है आपका जो एटलीस्ट काबुल एयरपोर्ट है अलॉन्ग विद कतर, हम उसको मैनेज करना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं उसको फैसिलिटेट किया जा सके आसानी से और स्मूथली। तो आज उसके ऊपर बात हुई, तो लेकिन टर्की ने इनको कहा है कि भाई जरा आते हैं हरकतें दुरुस्त करने की जरूरत है आपको।
मगर ये आप ये देख लेते कि ये दे आर वेरी एक्टिव।
हाँ, वेरी एक्टिव। जी 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 जी, ट्विटर कॉन्स्टेंटली इनका चल रहा है माजिद भाई, इन सबके ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं।
वेरी एक्टिव है वो, अभी दुआ में उन्होंने अमेरिकन से, यूरोपियन यूनियन के लोगों से और तमाम लोगों से मुलाकात की है और उसके बाद अब टर्की पहुंचे हैं। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट,
यस
दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड होपफुली वन डे दे इज गोइंग टू बी एबल टू मैनेज।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब वो जो है वो ये है, तो आज वहां पे थे। अच्छा जनाब, आज द वायर की एक स्टोरी है एंड दिस इज रिटन बाय सुमेधा पाल और इसकी जो हेडलाइन है बड़ी खतरनाक है। इसकी हेडलाइन है Our bodies are not battlegrounds. Students protest against Delhi police's torture of activists. ये है जी हेडलाइन इसकी पूरी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हुआ क्या है? द वायर वाले जो हैं ये इनके पास, स्टूडेंट्स के पास गए हैं जो कि दिल्ली के अंदर जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने इनके साथ बात की क्योंकि ये जो सारे थे स्टूडेंट्स ये इकट्ठे हुए हुए थे अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है इंडिया के, यूनियन होम मिनिस्टर, उनके घर के बाहर जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि जो कुछ लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ है उसको वो जो है आपका जो मिनिस्टर है उसका बेटा आशीष जो है उसको पकड़ो, उसको आप क्यों नहीं सजा दे रहे, उसने 8 लोग मार दिए जिसमें के 4 बेचारे जो हैं फार्मर्स थे, नहाते फार्मर्स थे, उनको आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो कर रहे हो। अच्छा, तो क्या किया दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस इनको कुछ स्टूडेंट्स को उठा के ले गई और ये सारी फीमेल्स थी, इनके साथ मर्द कम ही थे, तो फीमेल्स को उठा के ले गई क्योंकि ये काफी शोर वोर मचा रही थी, तो इनको मारा पीट एलिजिडली इनके मुताबिक, इन लड़कियों के मुताबिक जो इन्होंने बताया द वायर को कि इन्होंने हमें मारा पीटा और हमें हमारे कपड़े उतार के कितने केसेस में हमको मारा, हमको शेम किया और जो है हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हमको जो है हिट किया इन्होंने पुलिस वालों ने। अच्छा, अब जबकि ये सारा कुछ इधर चल रहा है तो ये वायर की ये जो सुमेधा पाल हैं ये कहती हैं भाई कि ये तो अब एक ढंग बन गया इस मुल्क के अंदर, यानी वो कहती हैं जब सीए के भी प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया की वो जो फीमेल स्टूडेंट्स थी वो भी जिस वक्त प्रोटेस्ट कर रही थी उस वक्त भी हमको शिकायतें आई थी कि इनको पकड़ा, डिटेन किया, मारा पीटा और इनको स्ट्रिप किया और इनको शेमिंग की इनकी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये इतनी ब्रूटैलिटी, यानी कि अगेंस्ट वुमेन तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, मर्दों के अगेंस्ट भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
एग्जैक्टली।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जी।
अच्छा, तो अब जब इतना कुछ हुआ तो सेंट्रल की गवर्नमेंट ने सोचा कि अब तो औरतें डर जाएंगी, तो उन्होंने वो जो औरतें जो हैं एक्टिविस्ट जो हैं वहां पे दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमको जितना मारोगे, पीटोगे, किक करोगे, थ्रैश करोगे, हम यूनाइटेड खड़े रहेंगे इस हरेसमेंट की अगेंस्ट और हम अपने स्टैंड से बिल्कुल नहीं हटेंगे और जितनी भी वुमेन बॉडीज हैं इस वायलेंस के अगेंस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट करती रहेंगी, तो आप हमको डरा नहीं सकते हैं। तो ये मतलब है वहां पे जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, हैं मजीद जमाल साहब, स्थिति गंभीर होती जा रही है।
सर के ऊपर से उड़ गया।
हाँ जी, हाँ जी। यानी कि मामलात जो हैं वो सीरियस होते जा रहे हैं।
ओके,
अब समझ आया?
अब आ गया।
अच्छा ठीक है, ये यानी कि मुझे सब टाइटल्स लाने पड़ेंगे नीचे। ठीक है जी, तो ऐसे हुआ। अच्छा जी, हमारे सिद्धू जी जो हैं, सिद्धू जी ने तो एक ही वो मौन व्रत जो है ना वो ये है, मैं ना मानूं, है जी, किसी चीज से वो खुश नहीं है। अच्छा, आज क्या हुआ जी, ये कांग्रेस के प्रदेश जो कमेटी है उसके ये चीफ हैं, आज ये पहुंचे हुए थे दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमीशन ऑफिस में, वहां पे इनकी मुलाकातें जो थी, हरीश रावत साहब जो कि एआईसीसी के जो प्रेसिडेंट वीएन के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसके जो है ये प्रेसिडेंट है, तो उनसे इनकी मुलाकातें हुई और भी कुछ लोगों से हुई हैं, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी जो है केसी वेणुगोपाल उनके साथ। अच्छा जी, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा अब वही है, सिंपल ये है कि इन्होंने, आपको पता ही, हमने बताया था कि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था कि भाई मैं तो पंजाब के मामलों में चलना नहीं चाहता आप लोगों के साथ। फिर जी इनको मनाया जगाया, इनको कहा कि भई आप ना छोड़ो, ये करो। अब जो है वो मीडिया, उसमें स्पेकुलेशन तो हैं, वो कहते हैं इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई है। अब जब वो ऐसी खबरें देते हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, कांग्रेस का डर यह, कांग्रेस हाईकमांड जो है उसका यह डर है कि इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी फिर से हमारी जो इन फाइटिंग है उसका फायदा ना उठा ले, क्योंकि अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी सिद्धू साहब जो हैं उनके क्या मामलात हैं। हरीश रावत साहब ने आज कहा है मीडिया को, उन्होंने सामने आके जब ये मीटिंग हो गई सारी, तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत सारी चीजें इनकी चरणजीत चन्नी साहब जो हैं उनके साथ, जो कि अब नए चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके साथ तय पा गई हैं और अब जो है यहां पे इनके बीच में लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन कुछ चीजें जो है उनको सेटल होने में टाइम लग जाता है। एक्सपर्ट्स जो है उनका कहना है कि इनकी लड़ाई तो थी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के साथ, ठीक है जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो राजा था, चलो उसके साथ तो लड़ाई बनती थी इसकी, और इसने कहा जी मैं राजे को हटा के राजे की जगह लूंगा। उन्होंने क्या किया है पंजाब ने, कांग्रेस वालों ने क्या किया या हाईकमांड ने क्या किया कांग्रेस की, एक दलित जो है उसको चीफ मिनिस्टर बना के बिठा दिया है। अब सिद्धू साहब तो जो है उनसे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही कि एक दलित कैसे ऊपर बैठा है। अच्छा, दो फैक्शंस हैं कांग्रेस के अंदर, एक कहते हैं कि ये इतना जो वीक चीफ मिनिस्टर आ गया ना उसका डेफिनेटली फायदा सिद्धू साहब को ही आएगा नेक्स्ट इलेक्शन में। दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं जी इनको ये हजम नहीं हो रही चीज कि एक दलित मेरे ऊपर कैसे बैठा हुआ है, मेरा बॉस कैसे बना बैठा हुआ है जी, तो अब उसकी वजह से इनका दिल जला हुआ है बड़ा ज्यादा। तो अब बीच में क्या उनके दिल में क्या खिचड़ी पड़ रही है वो तो हमें अभी तक पता नहीं चला है, उनके दिल का कुछ स्कैन वैन करना पड़ेगा फिर हमें को पता चलेगा। सिद्धू पाजी क्या हो गया आपको, दिल में डक रहे हो यार, पंजाबी हो आप है जी। अच्छा जी, तो अब ये चल रही है वहां पर, लेकिन बहरहाल सिद्धू साहब ने जो कांग्रेस हाईकमांड है यानी कि जो सोनिया गांधी हैं या के राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उनका उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं जब जब उनके पास गया हूं अपनी यानी कि हेडेक्स उनको देने के लिए अपने हेडेक्स उनको देने के लिए, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से जो है मेरे साथ पेश आए एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो अब देखेंगे अब क्या होता है जनाब। अच्छा जी, आज जो है, आज तो नहीं ये कल आया था, लेकिन कल मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने आर्टिकल आज पढ़ा तो वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है एंड दिस इज रिटन बाय राणा अयूब और इसका जो हेडलाइन है वो है टू सन्स टू सिस्टम्स ऑफ जस्टिस बट वन मैसेज फॉर इंडियंस फॉल इन लाइन। ये है जी हेडलाइन राणा अयूब की। आपको पता ही है ना राणा अयूब बड़ी फायरी किस्म की जर्नलिस्ट हैं, तो बड़े उनके अगेंस्ट भी क्रैक डाउन इंडियन गवर्नमेंट करती है बीजेपी की। अच्छा जी, अच्छा अब ये जो वॉशिंगटन पोस्ट का इनका आर्टिकल है इसमें उन्होंने लिखा बेसिकली क्या लिखा है, बहुत बड़ा आर्टिकल है लेकिन इसके अंदर बेसिक उन्होंने चीज क्या बयान किया। उन्होंने कहा जी कि इंडिया के अंदर ये जो बैक टू बैक दो वाकयात हुए, एक वाक्य क्या हुआ है लखीमपुर के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर, मिनिस्टर का बेटा था, उसके दोस्त यार थे, पूरी मोटरकेड थी वहां पे, जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स बैठे हुए थे बिल्कुल शांति से, उनके ऊपर इन्होंने गाड़ियां चढ़ाई, उसमें 8 लोग मर गए, 4 उसमें से जो थे फार्मर्स थे, एक जो था वो था जर्नलिस्ट था और 3 जो थे दूसरे लोग थे, ठीक है जी। एक तो केस ये है, दूसरा केस क्या है, एक बेटा ये है लेकिन ये स्टेट के यूनियन होम मिनिस्टर का बेटा है, अजय मिश्रा का बेटा है, ठीक है जी। दूसरा कौन है जी बेटा इंडिया का जो पकड़ा हुआ है आजकल, दूसरा जो बच्चा है वो बॉलीवुड के जो स्टार हैं शाहरुख खान, उनका बेटा आर्यन खान है, उसको पकड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं, वो कह रही है अपने आर्टिकल में कि मैं आपको अब कंपैरिजन करके बता रही हूं कि ये इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। वो कहते हैं जी आशीष मिश्रा जो हैं, जो कि अजय मिश्रा मिनिस्टर के बेटे हैं, उनको पहले तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था, उनको बहुत दिन तक तो पकड़ा ही नहीं गया, फिर जब सिविल सोसाइटी ने शोर हंगामा मचाया तो बस उनको पकड़ के ही लेके चले गए हैं बस, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक चालू नहीं की है। ओके जी, इसलिए क्योंकि उनके वालिद साहब जिनके के ऊपर मर्डर के बहुत सारे चार्जेस और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, उनको जो है इन्फ्लुएंशियल है वो बीजेपी में चूंकि, और वो जो है योगी आदित्यनाथ की जो चीफ मिनिस्टर है उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो उसके बेटे को हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बॉलीवुड का जो किंग है उसका बेटा चूंकि वो मुसलमान है उसको पकड़ लिया है, हालांकि उसके पास से ड्रग्स भी नहीं निकली हैं, हालांकि उसने ड्रग्स कंज्यूम भी नहीं की हुई थी, लेकिन उसको जो है अच्छी तरह से स्क्वीज किया जा रहा है. अच्छा, राणा अय्यूब जो हैं उन्होंने शाहरुख खान की दो फिल्मों का इसके अंदर जिक्र किया है. वो कहते हैं जी कि ये शाहरुख खान शायद जिस तरह की इसने फिल्में की है ना, ही इज नाउ लिविंग दोज फिल्म्स. एक फिल्म थी इसकी माय नेम इज खान, जिसके के अंदर इसका बड़ा फेमस सेंटेंस था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, जो कि 9/11 के वो जो उसमें सिनेरियो में ये जब बनी थी, जब मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा था. तो वो कहते हैं जी एक तो ये है, तो वो अब मुसलमान है तो ही इज लिविंग दैट. दूसरी कहता है जी इसने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था चक दे इंडिया. उसमें ये हॉकी कोच बना हुआ था, जिसमें कि इसको बहुत शेमिंग की गई थी फिल्म में शाहरुख खान को बहुत शेमिंग की गई थी, क्योंकि ये मुसलमान था और इसकी वजह से जो फिल्म में दिखाया गया है कि जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो इसने परफॉर्म नहीं किया, इसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान जीत गया और इंडिया हार गया. ठीक है जी, तो वो उसको इसलिए उसको शेमिंग करते रहे यानी फिल्म में कि जी तुम मुसलमान थे इसलिए तुमने पाकिस्तान का साथ दिया. तो वो कहते हैं जी कि इस मुल्क में जो मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम मोदी जी के आगे झुकोगे नहीं तो तुम्हें फिर स्क्रू किया जा सकता है अच्छी तरह से. तो वो कह रहे हैं जी कि क्या हुआ है कि जो शाहरुख खान था आज तक वो क्या करता रहा है, रिलीजियस इनटॉलरेंस जो मुल्क के अंदर इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है उसके ऊपर ये बात करता था. तो उसको बताने की कोशिश की है कि इफ यू डोंट फॉल इन लाइन तो तुम्हें जो है सीधा कर दिया फिर जाएगा और तुम्हारा ये हाल किया जाएगा. और वो कह रहे हैं जी कि उसकी वजह से ये जो बिगटेड गवर्नमेंट आ गई है ये अब पॉलिटिकल प्रेशर डाल रही है इसके ऊपर. अच्छा, दूसरी तरफ वो कहती है जी कि आप देखें कि हिंदुस्तान जैसा सेक्युलर कंट्री जिसका के कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर किसी को इक्वल राइट्स हैं, वहां पे अब फिल्में कैसी बननी शुरू होंगी. अक्टूबर 2 को महेश मंजरेकर, जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, वो फिल्मों में काम भी करते हैं, महेश मंजरेकर बहुत जबरदस्त एक्टिंग भी करते हैं, फिल्में बनाते हैं, उन्होंने कहा है जी कि मैं फिल्म बनाऊंगा, उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 2 को कि मैं फिल्म बनाऊंगा नथुराम गोडसे के ऊपर. और अगर आप लोगों को पता हो कि नथुराम गोडसे कौन है, नथुराम गोडसे वो आदमी है जी कि जिसने गांधी जी का, महात्मा गांधी जिनको ये बापू कहते हैं, उसका कत्ल इसने किया था. तो उसको बड़ा हेल किया जा रहा है उसको बड़ा. तो वो कहते हैं कि ये वो राणा अय्यूब कह रही है कि मुझे लग रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली एक माइंड सेट जो है इंडिया का वो जो है अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है. और इस तरह के जो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल और जो बीजेपी के साथी और आरएसएस के साथी लोग जो हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है और उनको बचाया जा रहा है. तो एक तरफ चूंकि इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर का बेटा है तो इसलिए उसको बचाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक मुसलमान बॉलीवुड का जो स्टार है उसका बेटा है तो उसको जो है बहुत ज्यादा यानी उसकी जो है खिंचाई की जा रही है. तो वो कहते हैं जी कि ये जो मोदी जी का नेशनलिस्ट विजन ये वाला है ये इट विल नॉट गो अ लॉन्ग वे. तो वो कहते हैं जी आपके पास दो ही चीजें हैं, या तो आप फाइट कर लें या फिर आप जो है चुप करके इस मुल्क में बैठ जाएं. लेकिन वो कहती है कि दिस इज अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर इंडिया. तो ये उसका बड़ा जबरदस्त जी आज का ये आर्टिकल था, कल का था, आज हम सुना रहे हैं आपको.
आज मैंने पढ़ा
तो आज मैं आपको सुना रही हूँ. अच्छा जी, आज ये वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है, अगेन दिस इज अ सेकंड रिपोर्ट फ्रॉम वाशिंगटन पोस्ट. इन्होंने आज जो आर्टिकल लिखा है और उसका हम बैकग्राउंड फिर आपको बताएंगे कि बैकग्राउंड क्या है इसका. वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर चूंकि जो है फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, खासतौर पे जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, और ये जो है उससे अब जो वहां पे लोगों को थोड़ी सी जो रोशनी की किरण नजर आती थी और सहूलत नजर आती थी कि भाई वहां से लोग जो है बच के आ सकते हैं, जो वहां पे रह गए हैं पीएए की फ्लाइट्स में बैठ के इस्लामाबाद आ सकते हैं. और हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को तो बड़ा थ्रेट नजर आ रहा था पाकिस्तान में, लेकिन वहां से अफगानिस्तान से लोग अपनी जान बचा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर इस्लामाबाद से अपने मुल्कों में जा रहे हैं. तो ये जो है अब फ्लाइट्स चूंकि रेस्टोर नहीं कर रहा है पीआईए तो उसकी वजह से बड़ी मुश्किल है. अच्छा जी, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड यह है कि पीआईए ने आज सुबह अनाउंस किया है कि हम काबुल के साथ अपनी तमाम फ्लाइटें सस्पेंड कर रहे हैं. उसकी वजह यह है, पीआईए के जो स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अफगान ऑफिशियल्स का इंतहाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है हमारे पास, लास्ट मिनट पे ये लोग चेंजेस करते हैं, लास्ट मिनट पे हमको बताते हैं कि ये ऐसे नहीं करना, इतनी फ्लाइट्स नहीं आनी, इतने बजे नहीं आना. तो दीज आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर सस्पेंडिंग ऑल फ्लाइट्स टिल फर्दर नोटिस टू काबुल एंड फ्रॉम काबुल बैक टू इस्लामाबाद हम जो है ये फ्लाइट्स कर रहे हैं. अच्छा, अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं तो जाहिर है कि इसके लिए यूरोपियन जो जो हैं उनका उनका वो आ गया है, कंसर्न आ गया, और इसीलिए वाशिंगटन पोस्ट में आज ये रिपोर्ट आई है. अच्छा, काबुल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका और स्टांस है. वो कहते हैं जी कि जिस वक्त पहले जब हालात ठीक थे, यानी कि हालात ठीक क्या थे, जब यानी कि अमेरिकन के साथ लड़ाई चल रही थी, उसको वो हालात ठीक कह रहे हैं. जब अमेरिकन के साथ लड़ाई चल रही थी, जब ये तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, उस वक्त काबुल से इस्लामाबाद आने के लिए हम लो सीजन में 120 यूएस डॉलर देते थे और हाई सीजन में 150 यूएस डॉलर देते थे. अभी पीआईए हमको चार्ज कर रहा है पर पर्सन 2500 डॉलर्स, विच इज टू मच. मुझे नहीं पता अब ये कितना सच है, पूछेंगे किसी पीआईए के ऑफिशियल से. तो इसलिए हमने इनको सिर्फ इतना कहा है कि आप अपनी प्राइसेस जो हैं उसको आप रिड्यूस करें. तो उस पर पाकिस्तान जो है, पीआईए जो है, नाराज हो गया. तो बहरहाल ये यूरोपियंस का बड़ा कंसर्न है कि अब जो लोग उधर फंसे हुए हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि और तो कोई उधर तैयारा नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा ना, कोई और जहाज नहीं जा रहा सवाई पीआईए के. तो इसलिए जो है वो है पाकिस्तान के अंदर जी बड़ा. आज फॉरेन ऑफिस जो है उसने रिएक्शन शो किया है, क्योंकि जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने जिसको के फॉरेन ऑफिस ने कहा इररिस्पॉन्सिबल एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है. अच्छा जी, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक इवेंट जो था उसके ऊपर थे, वहां पे गोवा के अंदर एक यूनिवर्सिटी जो है उसको ओपन करने के लिए गए, और उसने बड़ी पाकिस्तान को उन्होंने वहां पे अमित शाह साहब ने धमकी दी. उन्होंने कहा ये पहले का हिंदुस्तान और था जो सिर्फ बातें पाकिस्तान के साथ करता था, हम वो हिंदुस्तान नहीं है, मोदी जी की वो गवर्नमेंट नहीं है जो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातें करती है, हम तो वो गवर्नमेंट है और मोदी जी तो वो प्राइम मिनिस्टर है, और हमारी मोदी जी की वो गवर्नमेंट है कि अगर पाकिस्तान चूं चरा भी करता है तो हम उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देते हैं. जो कि जाहिर है पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया है कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन बहरहाल जी ये उन्होंने किया है. अच्छा जी, ये जब बात, अच्छा अब जब इन्होंने बात ये की तो जाहिर है पाकिस्तान में इसका रिएक्शन आया. फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तिखार अहमद, उन्होंने कहा है जी कि ये आप बिला वजह पाकिस्तान की एनिमिटी में ना ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं एक्सक्यूज मी, तो उससे टेंशन्स बढ़ती हैं इलाके के अंदर, तो आपको अपने जो हैं वो थोड़े से ध्यान से देने चाहिए. वो कहते हैं जी कि पहले अमित शाह साहब ने और भी कहा, उन्होंने कहा जी अब तो ये पाकिस्तान सोच नहीं सकता इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर वायलेशंस करने का, और ये तो यहां पे घुसने का, अगर घुसेगा तो फिर हम भी उनको जो है सबक सिखाएंगे. तो फॉरन ऑफिस ने कहा कि ये जो एक तो आप, और उन्होंने कहा जी हम इनको बिफिटिंग रिप्लाइज देते हैं पाकिस्तान को जब ये ऐसी कोई हरकत करते हैं. तो फॉरन ऑफिस ने कहा कि ये आपके जो जो भी कोई आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये आप बात करते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इलाके में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो हैं ये फॉल्स फ्लैग्स जो हैं ये आप बिला वजह के आप ना रेज करें, और ये जो फॉल्स ऑपरेशंस की आप बातें करते हैं ना, तो ये ऐसी बातें आप ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है. लेकिन बहरहाल ये आज काफी बड़ी खबर बनी रही इंडियन उसके ऊपर भी, क्योंकि इंडिया का मीडिया ये चला रहा था ओ अमित शाह के बयान ने पाकिस्तान को डरा दिया और ये और वो और फ्लाउडिंग, तो ये आज काफी गर्म हुई हुई थी इंडियन मीडिया के ऊपर जो है खबर है. अच्छा जनाब, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं. कहते हैं जी दुनिया सारी में क्लाइमेट के बड़े अजाब हैं, पाकिस्तान के अंदर देखें जरा कैसे कोशिश की जा रही है धीरे 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 कराची जैसी जगह पे, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जी बड़े वहां पे मुश्किलात हैं, ये हैं वो हैं, वहां पे इतना एक जबरदस्त जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इन कोलैबोरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड इन कोलैबोरेशन विद हेरिटेज फाउंडेशन. वहां पे एक 2 किलोमीटर की स्ट्रीट है फ्रॉम डेंसो हॉल टू कस्टम्स हाउस, उसके अंदर माजिद भाई कैन यू इमेजिन, जीरो कार्बन है, जीरो कार्बन. Wow. It's called a zero carbon street. और ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट चला और कराची के लोगों ने हमारे साथ जो है सहमति बनाई रखी और हमारे साथ ऐसे चलते रहे तो हम पूरे कराची को धीरे धीरे ऐसे करेंगे. आमिर ये जरा वीडियो दिखाएं प्लीज, जरा पाकिस्तान की कराची की.
शहर कराची जो है वो काफी कदीम है ना, और यहाँ बहुत सारी इमारतें जो बहुत कदीम है, जो कम अज कम 100-150 साल पुरानी है और बहुत खूबसूरत भी है. तो मेरा काम चूंकि विरसे को बचाना है, लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि आप ग्लोरी को वापस लेके आए कराची की, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हमारे हैं उन्होंने मुताजर शाह साहब ने एक मीटिंग कॉल की आखिर इसकी प्लानर्स की. तो मैंने उनसे कहा साहब गुजारिश ये है कि कराची को अगर आपको ग्लोरी वापस लानी है तो फिर उसकी तमाम जो इमारतें उनको बचाना होगा, उसके बगैर ग्लोरी कैसे आएगी. वही है जो कराची की शान है और उसी से सब लोग अपनी शनाख्त भी पहचानते हैं. उन्होंने कहा अच्छा बताइए क्या करें. तो मैंने कहा मेरा ख्वाब था कि अगर मैं चलूं केपीटी से तो मैं रविशों पे चलते चले जाऊं जब बहुत अच्छा लैंडस्केप एरिया हो, मैं एम्प्रेस मार्केट पहुंच जाऊं चलते चलते, मुझे गाड़ियों के बीच में से ना गुजरना पड़ेगा. तो फिर उन्होंने फरमाया कि अच्छा फिर आप बताइए डिजाइन कीजिए, तो मैंने वो रखकर डिजाइन कर ली। अब ये 2 किलोमीटर की हमने नोटिफाई, हमारे इफ्तिखार शलवानी थे कमिश्नर, उन्होंने नोटिफाई करवा दी कि डेंसो हॉल से लेकर कस्टम हाउस तक हम 2 किलोमीटर की ये चलने वाली स्ट्रीट बन सकती है, नोटिफाई हो गई। और इसे बेनतहा तारीखी इमारतें जो अभी भी सलामत है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि गिर जाए। तो ये फिर मसला ये हुआ कि मैंने कहा पहले सेगमेंट बनाए, लेकिन हुकूमत ने कहा पैसे नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका बेड़ा उठा लूं। तो मैंने खुद ही हेरिटेज फाउंडेशन ने डिसाइड किया, तो सारे सिविल वर्क हमने खुद किए, हमने 1.5 करोड़ रुपया इस पर लगाया है, वो इसलिए ताकि हम दिखा सकें कि आपका इको अर्बनिज्म क्या होती है, लो कार्बन चीजें कैसी होती हैं, आप कैसे क्लाइमेट स्मार्ट चीजें शहरों में बना सकते हैं।
ये स्ट्रीट जो है इसको मेरिट स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे काफी अर्बन इश्यूज थे, सिवेज के और सफाई के, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के, तो हमने पार्टनरशिप की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मैडम यास्मीन लारी ने इसको डिजाइन किया है। तो इसको हमने इको फ्रेंडली और जीरो कार्बन स्ट्रीट कहते हैं, जिसमें आप फॉरेस्ट भी देख रहे हैं। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो ताजर हैं, इनके कोऑपरेशन से ये जो है स्ट्रीट बनी है, लोग जो है वॉक कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग करें यहाँ पे, जो है इसको मजीद जो है ऑर्गेनाइज किया जा जाएगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हों ताकि लोग आके रिक्रिएशन के लिए भी इसको यूज करें, और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका बिजनेस भी जो है वो प्रमोट हो।
एक खूबसूरत जो है ये बना रहे हैं, बनाई है इन्होंने जी यहाँ पे, ये 2 किलोमीटर्स की, ठीक है जी, विच मीन्स के थिंग्स कैन बी डन। और आप देखें जरा कि ये शहर जो था, या ये जो सारी सिविलाइजेशन थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की यहाँ पे सिंध के अंदर, ये कितनी प्लान्ड होती थी किसी जमाने में। ये जरा ये एक और भी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जरा ये देखें, ये जो 4,500 साल पुरानी मोहनजोदड़ो का देखें जरा पैसेजेस, और आज का लड़काना देखें आप, तो मतलब बर्बाद तो हम खुद ही कर रहे हैं ना। ये जो बिलावल भुट्टो साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो, भाई अपने लड़काना में जहां पे रहते हो उसका तो हाल पहले देखो, 4,500 ओल्ड मोहनजोदड़ो की सड़क देखो, और अब 21st सेंचुरी की लड़काना की आप ये गली देखो आप, तो ये है जी, ये हाल ये है मुल्क का। तो अगर मतलब है कि अगर विल होए आपकी तो आप ये चीजें जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज। रामगोपाल वर्मा साहब जो है वो बड़े नाराज हैं आर्यन खान साहब के जो बेटे को पकड़ा है एनसीबी ने। उन्होंने कहा जी कि ये जो है बिल्कुल ये एक्यूजेशन जो लगाए हैं, तो ये जो एनसीबी है इन्होंने तो बड़ा एक लॉन्च पैड दे दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्च पैड दे दिया इस लड़के को फेमस करने के लिए। अच्छा, उन्होंने तो ये कहा। अच्छा, अब जो स्वरा भास्कर है उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि लोग जो हैं इस तरह की हरकतें करते हैं और इस बच्चे छोटे से के साथ जो ऐसे कर रहे हैं, और ये दिस इज कॉल्ड प्योर हरासमेंट। इसके अलावा जो शाहरुख खान साहब के साथ उनकी जो एक फिल्म थी जो रईस बनाई थी राहुल ढोलकिया ने, उन्होंने भी जो है बड़ा इसके ऊपर एतराज किया है, और उन्होंने कहा है जी कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि उस बच्चे के पास से कुछ मिला भी नहीं है और फिर भी उसके साथ ऐसे किया जा रहा है। तो ये हमको बजाय इसके कि हम लोगों का ये जो इस तरह के जो एनसीबी टाइप के जो इदारे काम करते हैं, हम उसकी वैसे तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस केस में लग नहीं रहा कि वो अपना काम कर रहे हैं ठीक से। तो मतलब लोग जो है अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है। तापसी पन्नू की जनाब फिल्म आ गई है रेशमी रॉकेट, और उसके ऊपर लोग जो है बड़े एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाजी कोई अच्छी फिल्मों में काम कर लो, इंतहाई थकी हुई फिल्मों में आप काम कर रही हो। ये एक जो है लड़की की फाइट है अगेंस्ट हर राइट्स, जो कि उसमें गई है गेम्स में गई है, तो उसके बारे में जी इन्होंने वो कहते हैं जी ये जो 2 घंटे की फिल्म है इसको देखना बड़ा अजाब है, तो आप भी ना देखें। अच्छा जनाब, आपको पता ही है राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड हैं उनको वो पॉर्न केस के अंदर पकड़ के ले गए थे, अब उनको बेल मिल गया है। तो शेरिल चोपड़ा ने उस वक्त कहा था कि ये बड़ा ही ये अच्छा आदमी नहीं है, और इसने मुझे भी फोर्सिबली किस करने की कोशिश की थी, और ये इस तरह की काम करता है। उसने आज कहा था, धमकी दी थी कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। तो इनकी जो लीगल टीम है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की, उसकी लीगल टीम ने कहा अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यानी मुंह खोलने की कोशिश की तो फिर तुमको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो अब ये कल पता चलेगा कि अब ये जो धमकियां चली हैं इसका क्या हुआ है। साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर ऑलराउंडर हैं लैंस क्लूसनर, उनका कहना है कि पाकिस्तान बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है। 24 अक्टूबर को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये मैचेस मोस्ट वॉच्ड होते हैं सारी दुनिया में, बड़ा जबरदस्त क्लैश होएगा। पाकिस्तान जीत भी सकता है, लेकिन इंडिया के पास भी इनफ एम्यूनिशन है टीम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, ठीक है जी। एंड एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट बाबर आजम। उन्होंने कहा है जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे थे ये कदाफी स्टेडियम लाहौर में, और उन्होंने कहा है जी कि हम जो है प्रेशर का दबाव नहीं लेते हैं जी, और हम जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके अंदर हम अपनी बेस्ट लड़के जो हैं परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, और मुझे बड़ी खुद ही पर्सनली मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पाकिस्तान टीम को जो है वो लीड कर रहा हूं, और एंड वी विल ट्राई टू विन, और अगर हमने ये पहला मैच जीत लिया तो फिर हमारा मोमेंटम बन जाएगा एंड वी माइट विन यू नो द ट्रॉफी.
Yes. All the best to Pakistan team and yes. All the players and all.
Go Pakistan, go, hey?
Go Pakistan.
Where to go? हम कह देते हैं. Where to go?
Where to go? Thank you so much.
Thank you, Majid. See you tomorrow.
सब आज 7 बजे हमारा प्रोग्राम जो आपको बहुत पसंद है भूली बिसरी यादें, और जनाब लियाकत मलिक साहब ये करते हैं, और लियाकत मलिक साहब का ये प्रोग्राम आज ट्रिब्यूट टू कमाल है. एंड फिल्म एक्टर कमाल, उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा. बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप देखना ना भूलिएगा. 7 बजे आज शाम को इसी चैनल पे, जहां आप देख रहे हैं ना, इसी चैनल पे होगा ये ई आवाज़ पे. एंड बस बकिया की बातें इंशाल्लाह ताला कल होंगी आपसे. चलते चलते गुजारिश है, खिलते जा जो हमेशा करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, कि अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें. हम आपके लिए दुआगो होंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें. खासतौर से हमारे दोस्त, हमारे भाई मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें. उनके साथ वो तमाम लोग जो अपना सफर मुकम्मल करके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनके गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद करें, उन्हें जन्नत पर फिरदौस में गता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. बशर्ते ज़िंदगी, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात. उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.
रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ. मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ. गरम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही तुझसे दुआ मांगता हूँ. जो भटके हैं उनको हिदायत अता कर, जो मज़लूम हैं उनको ताकत अता कर. मैं सब पे करम एक सा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ. करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM. हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288. इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं. हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com. लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप. रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी. फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com.
चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया.
बोले दरिया है
से दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मिलो दूर होगा साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था।
करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा, तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा। तेरी कसम जाने जाना, तेरे लिए मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना। तेरी कसम जाने जाना, तेरे लिए मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना। माही मेरा सोना सोना रब्बा मेरे है सलोना, तेरे सिवा मेरा कोई ना होना, याद कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
आई खुशबू
कादी
दिवाली दी फूड बेसिक्स ते किचन्स ऑफ द वर्ल्ड डील्स दे नाल हुन हर किचन चो आएगी खुशबू घर दे स्वादां दी अपने मसालियां दी ओ भी बिल्कुल सही प्राइस ते जिवें अक्टूबर 20th तक 4.5 किलो पार्लियामेंट क्लासिक रूबी अते इंडिया गेट रोजाना बासमती राइस सिर्फ $8.99 ते
वाह
खुशबू आई
नहीं
आ जाएगी एट फूड बेसिक्स ऑलवेज मोर फॉर लेस।
ऑटिज्म वाला हर बच्चा खास है और उना दा परिवार भी एरेनो किड्स इस गल नु समझ देने और एक विस्तारित माहौल दे विच वातावरण ऑटिज्म दियां सहूलतां देंदे ने इस दे नाल ही परिवारां दे नाल कम करदे ने ताकि उना दा बच्चा पूरी समर्थता दे नाल परवान चढ़ सके। साडियां सेवावां लैण वास्ते ब्रैम्पटन मिसिसागा और ओकविल सेंटर्स नु विजिट करो। एरेनो किड्स हर कदम ते तुहाडे नाल 20 साल तो लेकिन पहला कदम है विजिटिंग aranokids.ca।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
कोविड 19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया, ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन ऑनलाइन हो गई, होर ता होर। कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक सुनिया, ते हुन इना दा स्टोर भी